एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम मरिलिन रॉबिन्सन के पहले उपन्यास हाउसकीपिंग पर बात करने वाले हैं।
जी हाँ, हाउसकीपिंग 1980 में आया ये उपन्यास और आते ही इसने अमेरिकी साहित्य में एक खास जगह बना ली।
बिल्कुल, रॉबिन्सन खुद इडाहो से हैं और उनके लेखन में वो माहौल महसूस होता है। उनकी भाषा बहुत काव्यात्मक है ना?
हाँ, बेहद, और विषय भी बहुत गहरे हैं। आस्था, परिवार, यादें और ये सवाल कि आखिर घर होता क्या है।
सही कहा, और हाउसकीपिंग उस जमाने के हिसाब से थोड़ा अलग था। मतलब जहाँ दूसरे लेखक शायद शहरी जिंदगी दिखा रहे थे, रॉबिन्सन हमें इडाहो के एक काल्पनिक सुनसान से कस्बे फिंगरबोन ले जाती हैं।
बिल्कुल, और वहाँ वो माहौल, उसमें अमेरिकी गॉथिक का असर दिखता है। वो झील का रहस्य, वो खतरा, प्रकृति का घर पर हावी होना,
और साथ ही वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट विचारों का भी प्रभाव है, जैसे प्रकृति से जुड़ाव, समाज के बंधनों से आजादी।
हाँ, व्यक्तिगत सच की तलाश।
तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास के दिल तक पहुंचें, किरदारों के सफर को समझें
और उन सवालों पर सोचें जो ये उठाता है। घर, यादें, बिखराव में सुंदरता, ये सब।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं फिंगरबोन इडाहो से, एक ऐसा शहर जो एक बहुत बड़ी, गहरी और खतरनाक झील के किनारे बसा है।
सही, और ये झील सिर्फ मतलब पानी का फैलाव नहीं है, ये कहानी का एक जरूरी हिस्सा है, एक किरदार की तरह।
सुंदरता भी है, खतरा भी, एक अजीब सा संगम।
बिल्कुल, और ये यादों का, अनकहे दुखों का, परिवार के दबे हुए अतीत का प्रतीक भी है। कहानी की शुरुआती देख लीजिए, एक ट्रेजेडी से होती है जो इसी झील से जुड़ी है।
कथावाचक रूथ के दादा एडमंड फॉस्टर, उनकी ट्रेन पुल से उतरकर इसी झील में।
हाँ, और उनका शरीर कभी मिलता भी नहीं।
ये घटना, ये जैसे एक पैटर्न सेट कर देती है, परिवार से पुरुषों का गायब होना
और औरतें अकेली रह जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये नुकसान चलता रहता है, एक छाया सी।
और ये छाया और गहरी होती है जब सालों बाद रूथ और ल्यूसिल की माँ हेलेन,
जी, वो अपनी बेटियों को उनकी दादी सिल्विया के पास फिंगरबोन छोड़ जाती हैं
और फिर खुद भी उसी झील में अपनी कार समेत जान दे देती हैं।
तो आप समझ सकते हैं, शुरुआत से ही वो माहौल, एक खालीपन, एक खामोशी और झील के साथ परिवार का वो दर्दनाक रिश्ता, वो सब हावी रहता है।
और इसी माहौल में हम मिलते हैं मुख्य किरदारों से। पहले तो रूथ स्टोन, जो कहानी सुना रही है, शांत सी, संवेदनशील।
हाँ, हर चीज को बहुत गौर से देखने वाली, जैसे हर चीज के पीछे का मतलब ढूंढ रही हो। उसकी दुनिया यादों से भरी है, माँ की कमी के एहसास से।
और फिर है उसकी छोटी बहन ल्यूसिल, वो रूथ से काफी अलग है।
बिल्कुल, ज्यादा व्यावहारिक, जमीनी, उसके मन में एक सामान्य जिंदगी जीने की जबरदस्त इच्छा है, मतलब समाज में फिट होना चाहती है वो।
हाँ, जो घर की अजीब हालत है, गरीबी है, उससे निकलकर एक स्थिर पारंपरिक जीवन चाहती है। ये इच्छा स्वाभाविक भी लगती है ना उस स्थिति में?
बहुत स्वाभाविक, और शायद इसीलिए कहानी में एक तनाव पैदा होता है।
और फिर एंट्री होती है उनकी मौसी सिल्वी फिशर की, हेलेन की बहन। सिल्वी तो वाकई एक पहेली है।
सही कहा, सालों तक रेलगाड़ियों में घूमती रही, कहीं टिकी नहीं, प्रकृति ही उसकी साथी है। समाज के नियम कायदे उसके लिए कोई नायने नहीं रखते, उसका आना कहानी को एक नया मोड़ देता है।
वो पारंपरिक माँ या अभिभावक की छवि से एकदम उलट है,
पूरी तरह से। उसका घर संभालने का तरीका ही देख लीजिए, खिड़कियां खुली छोड़ देना, पुराने अखबारों और डिब्बों का ढेर लगाना,
जैसे घर और बाहर की दुनिया के बीच की दीवारें ही ना हो।
हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, या वो बस जैसी है वैसी जी रही है, कोई गहरा मतलब है इसका?
ये दिलचस्प सवाल है, शायद रॉबिन्सन हमें यही सोचने देती हैं। सिल्वी का व्यवहार चीजों के अस्थायी होने की अस्तित्व की एक गहरी समझ दिखाता है, भले ही वो सोच समझ कर ना कर रही हो।
वो बहनों पर उसका असर अलग अलग होता है, ल्यूसिल इस बिखराव से चिढ़ती है, विद्रोह करती है,
जबकि रूथ, वो धीरे धीरे सिल्वी की दुनिया की तरफ खिंचती है, उसकी खामोशी, प्रकृति से उसका वो जुड़ाव।
और माँ हेलेन, वो शारीरिक रूप से तो नहीं है कहानी में,
लेकिन उसकी याद, उसका वो आखिरी कदम पूरी कहानी पर एक साये की तरह है, जैसे वो पीढ़ियों के दर्द का प्रतीक बन गई हो।
कहानी का आगे बढ़ना भी सीधा नहीं है, ये घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं बल्कि भावनात्मक उतार चढ़ाव जैसा है।
सही, माँ की मौत के बाद पहले दादी सिल्विया हैं, जो दुख में भी एक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करती हैं।
हाँ, एक पारंपरिक तरीका, फिर उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय लिए परदादी लिली और नोना आती हैं।
लेकिन फिंगरबोन का वो माहौल, बच्चों की जिम्मेदारी, उन्हें रास नहीं आता, वो असफल रहती हैं।
जैसे ये दिखाता है कि पारंपरिक देखभाल के तरीके भी हर स्थिति में काम नहीं करते।
और फिर सिल्वी आती है। शुरू में शायद वो थोड़ी कोशिश करती है सामान्य दिखने की,
पर धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगता है। घर में चीजों का ढेर लगना, प्रकृति का अंदर आना,
पत्ते, बर्फ, यहाँ तक कि चिड़िया भी घोंसला बना लेती है घर के अंदर।
हाँ, ये पारंपरिक हाउसकीपिंग नहीं, उसका ठीक उल्टा है। घर दुनिया से बचाने की जगह नहीं,
बल्कि दुनिया को अंदर बुलाने का एक खुला दरवाजा बन जाता है।
और इस बदलाव का असर बहनों के रिश्ते पर पड़ता है। ल्यूसिल, जो अब बड़ी हो रही है, उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सामान्य दिखना चाहती है।
वो सफाई करने की कोशिश करती है, सिल्वी को टोकती है। एक तरह का घरेलू विद्रोह है ये।
जबकि रूथ को सिल्वी के इस अजीब लेकिन शांत तरीके में एक तरह का सुकून मिलता है।
वो सिल्वी के साथ रात में घूमने जाती है, झील किनारे बैठती है, प्रकृति को देखती है।
एक घटना बहुत अहम है, जब सिल्वी उन्हें नाव में झील के पार एक पुराने वीरान घर ले जाती है।
हाँ, और वहाँ आए तूफान में सिल्वी उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देती है।
उस अनुभव से ल्यूसिल तो डर जाती है, पर रूथ के मन में वो सिल्वी वाली जंगली आजाद दुनिया के लिए आकर्षण और बढ़ जाता है।
ये फासला बढ़ता जाता है और आखिरकार एक मोड़ आता है।
ल्यूसिल तय कर लेती है कि वो अब यहाँ नहीं रह सकती। वो अपना सामान पैक करती है
और अपनी होम इकोनॉमिक्स टीचर मिस रॉयस के पास रहने चली जाती है। मिस रॉयस उस साफ सुथरी व्यवस्थित दुनिया का प्रतीक है जिसकी ल्यूसिल को चाहत है।
और रूथ के लिए ये एक और झटका है, एक और परित्याग, बहुत दर्दनाक।
अब रूथ और सिल्वी बिल्कुल अकेली हैं समाज के हाशिए पर,
और उनकी ये अलग थलग जिंदगी शहर वालों को खटकने लगती है। शेरिफ, चर्च की औरतें, वो चिंता जताते हैं।
एक खतरा मंडराने लगता है कि सिल्वी को अयोग्य मानकर रूथ को उससे अलग कर दिया जाएगा। क्या समाज हमेशा, मतलब जो अलग है, उसे शक से ही देखता है?
अक्सर। और इसी सामाजिक दबाव के चलते कहानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अलग होने के डर से सिल्वी और रूथ एक चौंकाने वाला कदम उठाते हैं।
वो अपने उस पुश्तैनी घर को, जिसमें उनकी सारी यादें थीं, उनका इतिहास, उसे आग लगा देते हैं।
हाँ, ये जैसे अपने अतीत से, एक स्थिर जीवन की हर संभावना से, सारे रिश्ते तोड़ने का एक आखिरी भयानक फैसला है।
और फिर रात के अंधेरे में वो उसी रेल पुल पर पैदल चलते हैं जहां से दादा की ट्रेन झील में गिरी थी।
लेकिन वो गिरते नहीं, वो पुल पार करके फिंगरबोन से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।
जैसे उस दुनिया को पूरी तरह नकार दिया जिसने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था।
उपन्यास का अंत कई साल बाद रूथ की आवाज में होता है। वो और सिल्वी अब स्थायी आवारा हैं, गुमनाम,
शहरों के किनारों पर भूतों की तरह भटकती हुई।
हाँ, रूथ सोचती है कि लुसिल शायद एक सामान्य जीवन जी रही होगी और कभी कभार शायद उन दो अजनबी औरतों को देखकर चौंक जाती होगी।
रूथ की आवाज में अफसोस नहीं लगता है ना, एक अजीब सी शांति लगती है।
बिल्कुल, उसने अपना घर किसी इमारत में नहीं बल्कि उस निरंतर गति में, सिल्वी के साथ अपने उस रिश्ते में पा लिया है।
ये कहानी वाकई कई गहरे मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तो ये अस्थिरता बनाम स्थायित्व का सवाल।
हाँ, समाज हमें स्थिरता सिखाता है, जड़ें जमाने को कहता है, लेकिन सिल्वी का जीवन और फिर रूथ का भी, वो चीजों के बदलते रहने को, बहते रहने को स्वीकार करता है।
क्या रॉबिन्सन ये कह रही हैं कि जीवन का स्वभाव ही शायद अस्थिरता है?
ये एक बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ा है परिवार और परित्याग का थीम। बार बार लोग छोड़े जाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं।
लेकिन उपन्यास इसे सिर्फ एक बुरी चीज की तरह नहीं दिखाता, वो इन फैसलों के पीछे की उलझनों को देखता है।
सही, क्या परित्याग भी किसी तरह की समझ या जुड़ाव का रूप हो सकता है, भले ही वो पारंपरिक ना हो? जैसे रूथ का सिल्वी के साथ जाना, क्या वो परित्याग है या एक अलग किस्म की वफादारी?
और महिलाओं की भूमिका, सिल्वी और रूथ दोनों ही समाज की तय की हुई भूमिकाओं को नकारती हैं।
सिल्वी तो बिल्कुल नियमों के खिलाफ जीती है जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। ल्यूसिल पारंपरिक रास्ता चुनती है जो सुरक्षित लगता है।
और रूथ को इन दोनों के बीच अपना रास्ता खोजना पड़ता है।
प्रकृति का रोल भी बहुत अहम है। वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, एक आध्यात्मिक शक्ति जैसी लगती है। झील, जंगल, मौसम।
हाँ, वो किरदारों की अंदरूनी दुनिया से जुड़े हैं। सिल्वी का घर को प्रकृति के लिए खोल देना, क्या ये इस बात का प्रतीक है कि असली जुड़ाव बाहरी दुनिया से कटकर नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर ही मिलता है?
और क्या पारंपरिक घरेलू जीवन हमें किसी गहरे सच से दूर कर देता है? ये सवाल भी उठता है।
और सबसे जरूरी शायद स्मृति और नुकसान का विषय। रूथ लगातार अपने खोए हुए लोगों को याद करती है, उनकी कहानियों से मतलब निकालने की कोशिश करती है।
और सिल्वी की हाउसकीपिंग चीजों को फेंकती नहीं, जमा करती है, जैसे वो यादों को नुकसान को सहेज रही हो।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दुख से उभरना ही हमेशा लक्ष्य होना चाहिए।
हाँ, शायद रॉबिन्सन कह रही है कि कुछ नुकसान इतने गहरे होते हैं कि उनके साथ जीना, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही ज्यादा सच्चा है।
आखिर में ये सामाजिक अनुरूपता बनाम प्रामाणिकता की कहानी भी है। फिट होने की इच्छा जैसे ल्यूसिल की,
और अपने सच के साथ जीने की जिद जैसे रूथ और सिल्वी की, और प्रामाणिकता की कीमत अक्सर सामाजिक अलगाव होती है।
उपन्यास पूछता है, क्या आप वो कीमत चुकाने को तैयार है?
रॉबिन्सन की शैली भी इस अनुभव को बहुत खास बनाती है। रूथ की आवाज में कहानी कहना, वो भी अतीत को याद करते हुए, एक धीमी सोचने वाली लय बनती है।
हाँ, कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, बिल्कुल यादों की तरह।
और भाषा, उफ, रॉबिन्सन का गद्य कविता जैसा है, सटीक, गहरा, बिंबों से भरा हुआ।
वो उदासी और हैरत का एक मिला जुला माहौल बनाती है, इसे आप सिर्फ पढ़ते नहीं महसूस करते हैं।
प्रतीक, उपन्यास प्रतीकों से भरा है, झील तो है ही, मृत्यु, स्मृति, अतीत, अचेतन, एक डूबा हुआ संग्रहालय।
घर खुद एक प्रतीक है, यादों का भंडार, व्यवस्था और अराजकता की जंग का मैदान,
और अंत में उसका जल जाना, शायद ये बोझ से मुक्ति है, अतीत को पूरी तरह छोड़ देना।
रेल पुल भी एक सीमा, खतरे का निशान, दादा के लिए मौत की जगह,
पर रूथ और सिल्वी के लिए पलायन का रास्ता बन जाता है।
पानी के बिंब, बाढ़, बारिश, बर्फ, वो घुलने बदलने, अस्थिरता के विषयों को बार बार लाते हैं।
और हाँ, रोशनी और अंधेरे का इस्तेमाल भी अलग है, यहाँ अंधेरा अक्सर समझ और शांति से जुड़ा है,
जबकि दिन का उजाला सामाजिक नियमों और बाहरी दबावों का प्रतीक बन जाता है।
हाउसकीपिंग पढ़ने के बाद एक अजीब सा एहसास रह जाता है, उदासी भी है और एक गहरी शांति भी।
हाँ, ये पाठक को स्थिरता और अस्थिरता, समाज और अकेलेपन के बीच कहीं छोड़ देता है। ये सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं पर सवाल उठाता है।
बिल्कुल, ये आपको नुकसान और यादों को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है, दुख को सिर्फ एक समस्या न मानकर जीवन का हिस्सा मानने का विचार।
शायद इसमें एक अजीब सी आजादी है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सामान्य कहते हैं, क्या वो वाकई सबसे अच्छा है।
शायद ये कहानी हमें सिखाती है कि घर सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं,
बल्कि गहरे जुड़ाव और दुनिया को देखने के एक नजरिए का नाम है, चाहे वो कितना ही अपरंपरागत क्यों ना हो।
या शायद हाउसकीपिंग हमें याद दिलाता है कि जीवन में नुकसान और बिखराव तो होंगे ही,
और शायद उन्हें स्वीकार करने में ही एक अजीब किस्म की शांति और आजादी छिपी हो सकती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।